اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جلدی بولو.
پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. Prophet of Rahmah, the intercessor of Ummah, the owner of Jannah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, the one who recites Salat 200 times upon me on Friday, his 200 years sins will be forgiven. 200 saal ke guna maaf kar diye jate hain jo Juma ke din 200 baar durood e paak padhta hai. Hame Jume ke din specially kasrat ke saath, abundance ke saath durood e paak padhna chahiye. Aaiye milkar محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. How fortunate we are. Allah عز و جل has blessed us with the favor of Jummat al-Mubarak for the sake of his beloved Rasul صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Regretfully, like other ordinary days, we spent even Friday heedlessly, whereas it is a day of Eid. It is superior to all other days. The fire of hell is not blazed up on Friday. And the gates of hell are not opened on Friday night. On the day of resurrection, Friday will be brought in the form of a bride. The fortunate Muslim dying on Friday attain the rank of martyrdom and remain safe from the torment of the grave. Itna mubarak din hai. Is din itni sari barkatein nazil hoti hain. A renowned commentator of the Holy Quran, Hakim ul-Ummat Mufti Ahmad Yar Khan Naimi rahmatullahi ta'ala, has said, the reward of the Hajj performed on Friday is equivalent to 70 Hajj, as a reward of a single virtuous deed performed on Friday is enhanced 70 times. Har good deed, every good deed, it's, you know, multiplied by 70 on the day of Friday. So, hamare jo بزرگ تھے, ہمارے صحابہ کرام تھے, اولیاء کرام تھے, وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر, تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے کہ فرائیڈے والے دن زیادہ سے زیادہ گڈ ڈیڈز کر لیں, بیکاز اٹ ول بی ملٹی پلائڈ بائی 70 ٹائمز. بٹ انفارچونیٹلی ناؤ ڈیز وی آر, یو نو, اسپینڈنگ ایٹ فرائیڈے ایز اے آرڈنری ڈے, سر آرڈنری ڈے, اسپیشل ڈے. So try to make more good deeds on the day of Friday, like recite Durood-e Pak in abundance, like recite, make Tilawat-e-Quran on that day. Try to spend money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, khairat, sadaqat. We can, if humme se kisi ke walidain duniya se chale gaye, to try to visit the grave every Friday. So actually you get more and more reward. Or if you have planned, for example, you plan to visit any ill or sick your relative on Monday or Sunday, or you have planned to give charity on Monday or Tuesday, try to make 2-3 days earlier and make it on Friday. Because of that, you will give reward, inshallah, multiply by 70 times. Like in superstores, when we heard about any good deal, any special deal, 50% discount for that day or that Friday, or only for 2 days, we go there. Even we travel towards, you know, if it's far, we travel, us taraf hum jaate hain, we travel there, and we bought that things because we need that discount, we need that scheme. So, subhanallah, every Friday there is a scheme to earn more good deeds. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us power, give us energy, and give us, you know, hamara ye sense ban jaye, aisi hamari thinking ho jaye ki hum zyada se zyada nekiyan kamane wale ban jaye. Allah hame jume ke din ki khoob barkatein lootne ki taufeeq ata farmaye. Aaj jis topic par mujhe kuch baat karni hai, day of judgment is the most difficult day. ہم سب نے اس دن کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اس دن جہاں بہت ساری پرابلمز ہوں گی, وہ ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہوگی, دیر از نو شیڈو آن دیٹ ڈے, اٹس ویری ہاٹ ڈے, Suraj jo hai, is millions miles away. Hai. Sun, it's millions miles away from Earth right now. On that day, it will be only 1.25 miles away. And the Earth right now, ye hamari jo zameen hai, ye sand ki hai, ye patthar hai, theek hai. On that day, it will be in copper. Ab jab tambe ki zameen hogi, aur suraj only one and a quarter mile away hoga. To try to understand us waqt heat kya alam hoga. Agar UK mein 40 degree temperature ho jaye, to shayad bahut sare log to yahan bimar ho jayenge. Because you are not able or you are not habitual for that particular heat. But yes, in Pakistan, in India and all around the world, there are so many places 40, 45, baad hoga 50 degree tak temperature jata hai. But above 50 chala jaye, so nobody survives. Very hot. But try to imagine day of judgment. Us waqt kitna temperature hoga. रिवायतों में आता है कि इतना स्वेट, इतना पसीना निकलेगा कि लोग अपने ही स्वेट में, अपने ही पसीने में ड्रोन रोटियां खा रहे होंगे. इतना स्वेट, इतना पसीना निकलेगा. जबाने प्यास से बाहर आई हुई होंगी. अल आतश, हाय प्यास, थर्स्ट, थर्स्ट की आवाजें आ रही होंगी. ऑन दैट डे देर इज अ शैडो, ओनली वन शैडो, और वो होगा द शैडो ऑफ अर्श इलाही. اليوم لا ظل الا ظل عرشک, اللہ کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری حدیث پاک میں کیٹیگریز بیان کی. دیر آر کیٹیگریز آف 7 پرسن, کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے کہ جن کو بروز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. Those 7 type of fortunate people will get the shadow of Arsh-e-Ilahi on the day of judgment. Ab bayan shuru karne se, is topic ko aage badhane se pehle, ek intention kar lete hain ki jo ye 7 type of people hain, agar main usme lie nahi karta, main usme belong nahi karta, to main aaj niyat kar lu, intention kar lu ki kam se kam kisi bhi ek category mein main inshaallah apne aap ko shamil kar dunga inshaallah. Because how I stand without the shadow of Arsh-e-Ilahi on that heat, main kaise khada reh sakunga, aur wo ek do ghante ke liye nahi hoga. It's for 50,000 years. Qiyamah ka ek din 50,000 saal ke barabar hoga. So please prepare yourself for the shadow of Arsh-e-Ilahi. And now listen carefully. Those fortunate 7 categories or 7 type of people will get the shadow of Arsh-e-Ilahi on the day of judgment. Number one, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, a just ruler, an insaf karne wala, hakim, badshah, ya jo bhi iktidar ke log hote hain, ruler. Main janta hu yahan par koi hamare sath ruler to nahi hai, magar in our life we get chance to make, you know, sometime koi faisla karane ki, justice karane ke mauka aa jata hai. Jab do mein koi conflict ho jata hai, family mein, doston mein, hum baithte chalo yaar main faisla karwa deta hu. Always, whenever you have chance to make, you know, make conclusion or make, try to bitha kar koi conclusion nikalna cha rahe hain, so make justice. Na insafi na karna, Allah ko insaaf karne wale log pasand hai. Baaz waqt banda kehta hai mera bhai hai, meri family ka hai, hamare gaon ka hai, I know him, بہت سالوں سے جانتا ہوں, تھوڑی فیور کر دو. نہیں, جب آپ کو دو مسلمانوں کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان انصاف کرنا ہے, جسٹس کرنی ہے, تو باعث نہیں ہونا ہے. جو حق کا فیصلہ ہے آپ نے وہ فیصلہ کرنا. سیکنڈ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا, the young man who spent his youth in worshipping Allah. Subhanallah. There are so many young people here. Jawan, wo naujawan, wo young, jo apni youth life ko jo hai, wo Allah ki ibadat mein spend karta hai, spend the worshipping of Allah subhanahu wa ta'ala, he will get the shadow of Arsh-e-Ilahi on the day of judgment. Allah Akbar. Nowadays, young kehta hai, bhai abhi to mazay karne ke din hai. جوانی تو دیوانی ہوتی ہے, اس میں تو انجوائے کرنا ہے, بعد میں توبہ کر لیں گے, بڑھاپے میں میں اللہ اللہ کر لوں گا. بٹ آپ کے پاس یو ہیو گارنٹی ٹو یو بیکم اولڈ. Nobody knows when we go from this world. کیا نوجوان دنیا سے نہیں چاہتے؟ کبھی آپ قبرستان جائیں, گریو یارڈ, گریو یارڈ میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ تختی لگی ہوتی ہے نا, ایوری گریو پر ایک نوٹ لگا ہوا ہوتا ہے کہ جس کا نیم بھی ہوتا ہے اور ایج بھی ہوتی ہے کہ کس ایج میں ان کا انتقال ہوا. तो कहीं आपको 60 इयर्स के किसी बंदे की भी कब्र नजर आएगी, 70 इयर्स की भी नजर आएगी, और 10 साल के बच्चे की कब्र नजर आएगी, 20 साल के नौजवान की कब्र भी नजर आएगी. इन दिस वर्ल्ड वी केम इन अ वन सीक्वेंस. माय ग्रैंडफादर केम फर्स्ट, देन माय फादर, देन मी, देन माय सन, देन माय ग्रैंडसन्स. दिस इज द सीक्वेंस. बट वी गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज नॉट कंपल्सरी. सम टाइम फादर इज देयर, बच्चा सन दुनिया से चला जाता है, ग्रैंडफादर मौजूद होता है और ग्रैंडसन दुनिया से चला जाता है. तो हम सबको इस बात के लिए तैयार होना है कि सुभान अल्लाह, यूथ में इबादत की अल्लाह को बड़ी पसंद है. मुबारक हो उन यंगस्टर्स को कि जो यंग एज में अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं. दिस इज द चैलेंज. शैतान हमें बहकाने की कोशिश करता है, यही तो फाइट करनी है ना शैतान से. आप यंग हैं, आपके अंदर एनर्जी है, शैतान अटैक्स यू, और आप शैतान को बताएं कि आई एम नॉट योर स्लेव, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं रहमान का बंदा हूं, शैतान का बंदा नहीं. बड़ी खूबसूरत बात उलमा फरमाते हैं कि ग्रेट ताबई सैयदना अमर बिन मैमून औदी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैज नरेटेड दैट द बिलीविंग एंड ब्लेस्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज स्टेटेड व्हाइल्स एडवाइजिंग अ पर्सन वैल्यू फाइव थिंग्स. ये जो जवानी है ना, इसको किस तरह नबी पाक ने बहुत खूबसूरत बात फरमाई, पांच चीजों के बारे में फरमाई. इख्तनिम खमसन कबल खमसन, वैल्यू फाइव थिंग्स बिफोर फाइव अदर थिंग्स. नंबर वन, यूथ बिफोर ओल्ड एज, हेल्थ बिफोर इलनेस, वेल्थ बिफोर, इससे पहले कि आप गरीब हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन, लेजर टाइम बिफोर बीइंग बिजी, एंड लाइफ बिफोर डेथ. अल्लाह करे ये पांच चीजों की मैं और आप कदर करने वाले बन जाए. आज बंदे के पास जवानी है तो कहता बुढ़ापे में कर लूंगा, पैसे है तो कहता बाद में कर लूंगा, सेहत है तो कहता थोड़ा और टाइम निकाल लो फिर इबादत कर लूंगा. फिर जब बीमारियां आ जाती है, इलनेस आ जाती है, आप मिले कुछ बीमारों से, रो रहे होते हैं, काश पैरों में जान होती तो मैं भी नमाज पढ़ता, खड़े होकर नमाज पढ़ता, अब तो सेहत भी नहीं, रोजे भी नहीं रख सकता, अब दीन का काम करना है मगर अब ताकत ही नहीं रही. अब जब ताकत थी तो क्या किया? If you have strength, if you have, mashallah, good health, if you have leisure time, if you have richness, अगर आपके पास पैसे हैं, wealth है, तो ये time है ना दीन का काम करने का. इससे पहले कर लो कि ये नेमतें चली जाएं. और ये youth, subhanallah, जो बच्चा, ये मेरे youngster बैठे हैं, please, youth age में, young age में, अपने body parts को sin से, गुनाहों से बचाओ. अल्लाह करीम ओल्ड एज में तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को बीमारियों से बचा देगा. अल्लाह अकबर. जरा सुनिएगा, सैयदना अबू तैयब तबरी रहमतुल्लाह अलैह वाज मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड हेल्दी. ही वाज नियर अबाउट 100 इयर्स ओल्ड. समवन आस्क्ड हिम ऑफ द सीक्रेट ऑफ हिज हेल्थ. सो ही रहमतुल्लाह अलैह रिप्लाइड, आई प्रोटेक्टेड माई फिजिकल एबिलिटीज फ्रॉम सिंस इन माई यूथ, सो अल्लाह सुभानहू व तआला हैज रिटेन देम फॉर मी इन माई ओल्ड एज. गुनाहों से अपने बॉडी पार्ट्स को बचाया, अल्लाह ने बुढ़ापे में मेरे नाजा को बचाया. अब आपके ऊपर है कि आपने जो यंग एज है उसको कैसे गुजारना है. सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि हम अपनी जवानी को गुनाहों से बचाकर अल्लाह की इबादत में. अच्छा, आज के दिन एक बात होती है जनाब, बड़ा मुश्किल दौर है, गुनाहों का सैलाब है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेव योरसेल्फ इन दिस एनवायरनमेंट, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन यूके, वी आर इन बर्मिंघम, वी आर वॉचिंग सो मेनी यंग ब्रदर्स, माशाल्लाह, व्हेन दे अटैच विद द एनवायरनमेंट ऑफ दावत इस्लामी, they are worshipping, mashallah, they have imaman, they have head, they have beard, mashallah, become hafiz, alim. It means if anybody want to become pious in that particular environment, it will be possible. Ji haan, aaj ke daur mein bhi mumkin hai, naujawan ibadat kar sakta hai agar wo acha mahol apna le, achhi company apna le. To jo maa baap mujhe sun rahe hain wo apne bachchon ko daawat islami ke madani mahol se wabasta kare, aur jo youngster mujhe sun rahe hain jo is nemat ko paana chahte hain, nabi paak alaihi salam ki sachi gulami ikhtiyar karna chahte hain, on the day of judgment shadow of arsh e ilahi paana chahte hain, we are welcoming you, we are offering you the environment of daawat islami. Aaiye दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं, इंशाल्लाह आपके लिए भी नेकियां करना आसान हो जाएगा. अब शराबी के साथ बैठकर तो मैं नमाजी नहीं बन सकता ना, ड्रग डीलर के साथ बैठकर मैं अल्लाह का नेक बंदा बन जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है. आई हैव टू चेंज माय कंपनी, मुझे दोस्त ऐसे अपनाने होंगे. प्लीज एक बात याद रखिएगा, रिवायतों में आता है दोस्त वो होता है जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए. आई सी माई फ्रेंड I remember Allah subhanahu wa ta'ala. Please check in your friend list, is there any one, only one friend you have like that? कि जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे अल्लाह याद आता है. हमने तो ऐसे दोस्त बनाए हैं जिसको देखकर सिनेमा याद आता है, जिसको देखकर बुरी चीजें याद आती हैं, फ्रॉड याद आता है, ड्रग्स याद आते हैं, गैम्बलिंग याद आती है. प्लीज ऐसे दोस्त बनाओ जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए. इंशाल्लाह वो दोस्त आपको नेक बनाने में हेल्पफुल बनेंगे. थर्ड कैटेगरी, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, द पर्सन हु रिमेंस अटैच्ड टू मस्जिद इवन एट द टाइम ऑफ एग्जिटिंग इट अंटिल ही रिटर्न्स टू इट. वो बंदा जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, अटैचमेंट ऑफ हार्ट इन मस्जिद, मस्जिद से बाहर जाए फिर उसका दिल चाहे कि मैं मस्जिद में आ जाऊं, उसको भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा. अब सोचिए कि हमारा क्या हाल है, क्या हम ऐसे हैं कि मस्जिद में आते हैं तो काम कूल रिलैक्स और वॉन्ट टू कम अगेन एंड अगेन इन मस्जिद. कुछ लोग तो ऐसे जो सिर्फ फ्राइडे भी मस्जिद में आते हैं, आज आए हैं फिर अगले फ्राइडे को आएंगे, पूरा हफ्ता मस्जिद में आना ही नहीं है. ऐसा ना करें. जो मस्जिद से अटैच रहता है, जो मस्जिद में आता जाता रहता है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ऑन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो. एक बड़ी प्यारी एग्जाम्पल उलमा देते हैं, द मोमिन इन मस्जिद लाइक फिश इन द वॉटर. आपने देखा होगा मछली जब पानी में होती है काम कूल रिलैक्स, और फरमाया जो मुनाफिक होता है वो मस्जिद के अंदर ऐसे होता है जैसे मछली पानी के बाहर होती है, बेचैन बेकल, मजा ही नहीं आ रहा होता. तो चेक योरसेल्फ दैट व्हेनेवर आई बिकम इन मस्जिद, व्हाट्स माय फीलिंग इन माय हार्ट, आई फील काम कूल रिलैक्स, या मुझे बेचैनी होती है अल्लाह के घर में, जल्दी भाग रहा होता है. मस्जिद में आया करो और सुकून से बैठा करो, थोड़ा वक्त स्पेंड किया करो. यू नो मस्जिद इज द हाउस ऑफ अल्लाह अज़्ज़ वजल. आपके घर में मैं आता हूं या आप मेरे घर आएंगे तो जो होस्ट होता है ना वो गेस्ट का ख्याल रखता है. होस्ट ऑलवेज ट्राई टू प्लीज हिज गेस्ट. है जब गेस्ट आता है वो चाहता है वो कंफर्ट रहे, रिलैक्स रहे, खुश होकर जाए. सोचो जो बार बार अल्लाह का मेहमान बनेगा वो करीम कितना खुश करके भेजेगा, झोलियां भर के भेजेगा. मगर प्रॉब्लम ये आने के लिए कोई तैयार नहीं है. जुम्मा भाई जुम्मे के लिए आ गए उसके बाद नहीं आते. जुड़े रहो मस्जिद से, अटैच रहो, डेली आओ. और जो कभी कभी लोग कहते हैं ना मैं मस्जिद नहीं जाता, अरे हमारी क्या औकात जो हम कहें मस्जिद नहीं जाते, तो मैं बुलाया नहीं जाता. ये अल्लाह का घर है, विदाउट परमिशन कैसे आ सकता है कोई आपके घर में? कोई आ सकता है बेल बजा के आज आपके घर में रहूंगा? आप कहेंगे हू यू, हू आर यू, आई डोंट नो यू, हाउ यू कम इन माय हाउस विदाउट माय परमिशन. जब आपकी परमिशन कोई आपके घर में नहीं आ सकता, अल्लाह के घर में कैसे आ सकता है? इट मीन्स अल्लाह जिन्हें बुलाता है वही उनके घर आता है. अब जो नहीं आता ना उसको माफी मांगनी चाहिए, या अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, मेरे इतने गुनाह हो गए माफ कर दे, और मुझे जल्दी जल्दी अपने घर का मेहमान बना. मुबारक हो उनको जो 5 times डेली मस्जिद में आते हैं. आका फरमाते हैं जिसका दिल मस्जिद में रहेगा, हदीस पाक का मजमून है, उसको कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो. The fourth person, the two persons who met each other and went away from each other while loving each other for the sake of Allah Azza wa Jalla. Aapas mein mulaqat karein aur juda ho jaye only for the sake of Allah Subhanahu wa Taala. Ye mulaqat, ye meeting not for any worldly purpose. Ye meeting ho Allah ke liye, mulaqat ho Allah ke liye. ये मुलाकातें जो है वो बड़ी पसंद है अल्लाह. हम तो मिलते भी उससे जिससे मतलब होता है, जो हमारे गांव का होता है, हमारे मोहल्ले का होता है, कोई लेना होता है, कोई देना होता है, कोई बिजनेस डील, कोई फायदा, फिर सलाम करते हैं, वरना सलाम भी नहीं करते. ऐसे ना किया करो, सब मुसलमानों से मिला करो, अल्लाह के लिए दोस्ती किया करो. लोग आपने देखा होगा दावत इस्लामी के साथ मदनी काफिले में जाते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं होते, मगर ये मुलाकात क्यों होती है? Only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. ये वो मुलाकातें हैं कि बंदा मिले भी अल्लाह के लिए, जुदा हो जाए अल्लाह के लिए, अल्लाह उन दोनों मुसलमानों को कयामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए. तो इस तरह की महफिलों, इस तरह के इज्तिमाआत, मदनी काफिलों, रिलीजियस गैदरिंग्स जहां लोग अल्लाह के लिए मिलते हैं, उधर जाया करें, इंशाल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी. मैंने बयान के शुरू में कहा था कि चेक लिस्ट आज चेक करनी है कि अगर वो 7 categories में मैं कहीं भी नहीं हूं तो आज कम से कम 1 category में अपने आप को शामिल कर लेना है. तो इंटेंशन आपने करनी है कि किधर कमजोरी है जो मैंने फौरन उसको फुलफिल कर लेना है. पांचवा, मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, द पर्सन हु रिमेंबर्स अल्लाह अज़्ज़ वजल इन प्राइवेसी एंड हिज आईज़ शेड टीयर्स. वो बंदा जो اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو. ہم کبھی کبھی محفل میں، اجتماع میں تو رو پڑتے ہیں، دعا ہوتی ہے تو آنسو نکل آتے ہیں، لیکن مزہ اس میں ہے کہ بندہ قیامت کے دن بندہ اللہ کو اکیلے میں یاد کرے. کبھی کبھی کیا کرو ایسے، تہجد کا وقت ہو، کوئی کیوں نہ دیکھ رہا ہو، میں جانوں میرا رب جانے، ہاتھ اٹھائیں، گناہوں کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اس کی یاد دل میں بسائیں، اکیلے میں دعائیں مانگنے کی عادت ڈالو، اکیلے میں عبادت کرنے کی عادت ڈالو، اور ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب سے باتیں کیا کرو. انشاءاللہ جب آپ اپنے رب سے باتیں کرو گے، آنسو بہیں گے، تو وہ رب اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. یہاں لوگ کہتے ہیں یار بڑے آدمی سے ملنا بڑا مشکل ہے. If you want to meet any lord, any mayor, any minister, any prime minister, it's very difficult to find a time with him. First of all, you have to contact with his secretary or any appointment, and then time limit. Okay, if you got appointment and then told you that we meet for 5 minutes, only 5 minutes you have to talk with him because very busy guy. ایسے ہوتا ہے نا. But سوچو دنیا والوں سے ملنے کے you need appointment, you need secretary, there is a time limit. And if you want to talk with your Allah subhanahu wa ta'ala, جس نے ساری کائنات بنائی ہے، احکم الحاکمین ہے، نو نیڈ فار اپوائنٹمنٹ، نو نیڈ آف سیکرٹری، اینڈ دیر از نو ٹائم لمٹ. جتنی بات کرنی ہے کرو نا، اللہ سے کمیونیکیشن کتنی آسان ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ عبد الکریم ٹولڈ کو فرماتے سیٹ کہ جب میں چاہتا ہوں، وین آئی وانٹ دیٹ آئی وانٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹاک می، اللہ کریم مجھ سے بات کرے، میں قرآن پاک پڑھنے لگ جاتا ہوں. And when I want that I talk with Allah subhanahu wa ta'ala, جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. تو کرو نا باتیں اللہ سے. Whatever problem you have, ask your Allah subhanahu wa ta'ala with your core of your heart کہ اللہ پریشان ہوں، مالک مصیبت میں ہوں، پھنس گیا ہوں، گھر میں بیماریاں ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، فیملی پرابلم ہے، اولاد بیمار ہے، جو بھی پرابلم ہے بولو نا اپنے اللہ سے. وہ قریب ہے، وہ رحیم ہے. جب دل سے اسے پکارو گے تو وہ ضرور مدد فرمائے گا، وہ ضرور پرابلم کو سالو فرما دے گا. تو اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے والا اور آنکھوں سے جس کے آنسو بہ نکلے، انشاءاللہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. The sixth person, the person whom a wealthy and beautiful woman tries to invite him to commit sin, but he rejects this offer by saying, I fear Allah Azza wa Jal. یعنی جس کو گناہ کا موقع ملے، جس کو گناہ کی طرف بلایا جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے کرتا ہوں، یہ بڑا امتحان. گناہ کا موقع نہ ملنا یہ بڑی نعمت ہے، مگر امتحان کب شروع ہوتا ہے کہ جب اکیلے میں ہے بندہ اور اس کو گناہ کا موقع مل رہا ہے اور اب وہ چھوڑ دے گناہ کو بیکاز آف فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کرے کہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے. دروازہ بند کر دیتے ہیں، لائٹ آف کر دیتے ہیں، ہیڈ فون لگا لیتے ہیں کہ یار کوئی نہ دیکھے، کسی کو پتا نہ چلے میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. یار برمنگھم میں بہت جاننے والے ہیں، ذرا لندن چلتے ہیں، کسی اور کنٹری چلتے ہیں، یورپ چلتے ہیں، ادھر کوئی نہیں ہوگا دیکھنے والا. تم کدھر بھی چلے جاؤ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. He's watching you. Whatever you are doing. اللہ کہے کہ ہمیں اکیلے میں بھی احساس ہو جائے. اچھا کمال کی بات یہ، دنیا والے دیکھ لیں تو کیا کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ ناراضی ہو جائیں گے نا، پنشمنٹ تو نہیں دے سکتے. جس نے پنشمنٹ دینی ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس نے عذاب دینا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کا ڈر نہیں ہے. جس نے کچھ کرنا نہیں ہے اس سے چھپ رہے ہوتے ہیں. کتنا عجیب معاملہ ہے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت اسی بات کو تو سمجھا رہے ہیں کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ اللہ کے کیے، چھپڑے لوگوں سے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ خیال دل میں بیٹھ جائے جب بھی برائی کرنے کا، گناہ کرنے کو جی چاہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک بار ایک علاقے میں ایک مرد نے ایک ویمن کو پکڑ لیا، ہاتھ میں اس کی نائف تھی اور بیڈ ڈیڈ تھی، اس کی گناہ کرنے کا ارادہ تھا. لوگ جمع ہو گئے مگر بدماش تھا وہ. Nobody had power or courage to go towards that sinner person to stop him. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. تو ایک بزرگ آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا. وہ بڑا بدماش تھا، اس کے ہاتھ سے وہ کھنجر، وہ چاقو گرا اور وہ بے ہوش ہو گیا.
थोड़ी देर बाद उसको होश आया तो औरत तो चली गई, भाग गई थी। तो किसी ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम बेहोश हो गए? कहा ये छोड़ो, पहले बताओ वो कौन था जिसने मेरे कान में एक वर्ड कहा था? कहा वो तो जमाने के वली हजरत इब्राहिम बिन अदब रहमतुल्लाह तआला थे। कहा लेकिन ये तो बताओ उन्होंने तुम्हारे कान में क्या कहा था? कहा बस उन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि व्हाट एवर यू डूइंग राइट नाउ, इस वक्त जो तुम कर रहे हो वो अल्लाह देख रहा है। अल्लाह इज वॉचिंग यू व्हाट एवर यू डूइंग राइट नाउ। कहते बस मैंने ये सुना और मेरा दिल खौफ से लरजने लगा, खंजर गिर गया और मैं बेहोश हो गया। काश अकेले में गुनाह करते वक्त ये बात हमारे दिल में आ जाए, हमारे दिमाग में अलार्म बजे कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, व्हाट एवर यू डूइंग राइट नाउ, योर अल्लाह इज वॉचिंग यू। अल्लाह करे कि ये बात जब दिल में आ जाएगी तो गुनाह से बचना आसान हो जाएगा। लास्ट द सेवंथ कैटेगरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द पर्सन हु गिव्स चैरिटी एंड कंसील्स इट सो मच दैट हिज लेफ्ट हैंड डज नॉट नो व्हाट द राइट हैज गिवन, उसका बायां हाथ ना जाने कि उसने दाएं हाथ से क्या सदका किया। खैरात दे मगर अल्लाह के लिए, पता ना चले किसी को, मैं जानू और रब जाने, यह है बड़ा डिफिकल्ट। हम तो चाहते हैं हमारा अनाउंसमेंट होना चाहिए, इमाम साहब खास ऐलान करें कि फला हाजी साहब ने इतने पाउंड दिए हैं, और उसका फिर खास दुआ भी होनी चाहिए। हुजूर मैंने पंखे लगाए तो मैंने हीटर लगाया, मैंने भी कारपेट बिछा दिए हैं, मस्जिद में कूलर की जरूरत थी, जरा स्पेशल वाली दुआ चाहिए। अपने दिल से पूछें, ट्राई टू आस्क विद योर हार्ट, व्हाई यू नीड योर नेम, व्हाई यू नीड अनाउंसमेंट ऑफ योर नेम। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान ये चाहता है कि आपको, आपका जो ये सवाब है ना ये जाया हो जाए। प्लीज शैतान के वेपन, शैतान के हथियार समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल ही ट्राइज टू स्टॉप अस टू मेक अ गुड डीड, पहले वो हमें नेक आमाल करने से रोकता है। और जब ये देखता नहीं बंदा नहीं रुक रहा, नेक आमाल कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, चंदा दे रहा है, ज़कात दे रहा है, सदका दे रहा है, उमरा कर रहा है, हज कर रहा है, अब वो दूसरा वेपन इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसने नेकी कर ली ना, अब इसकी नेकी को डेमोलिश कैसे करना है, अब इसकी नेकी को नल एंड वॉइड कैसे करना है। और दिस इज द मेन यू नो सीक्रेट वेपन ऑफ शैतान। वो क्या करता है, दिल में डालता है कि यार लोगों को बताओ, जरा पता तो चले मैंने कितने रोजे रखे हैं, कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितना सदका दिया है, अल्लाह अकबर। और बंदा ये सारे अमाल अपने जाया कर देता है। इबादत करो अल्लाह के लिए, मैं क्यों बताऊं किसी को कि मैंने क्या नेकी की है, अपने गुनाह बताते हैं। हाँ ये बताइए ना, उलमा कहते हैं द डेफिनेशन ऑफ इखलास, इट्स हाउ यू सीक सीक्रेट, यानी आप जिस तरह हाइड करते हैं अपने सिंस को, अपने गुनाहों को, बंदा जिस तरह छुपाता है ना, बिल्कुल इसी तरह अपनी नेकियों को छुपाता है। मगर अगर मामला उल्टा है, गुनाह छुपाते हैं, नेकियां सबको बताते हैं, 15-15 साल पुरानी नेकियां बताते हैं। हम तो मिलते हैं ना लोगों से, कोई कहता है जनाब मैं 15 साल पहले हज पर गया था, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से उम्रे पे जा रहा हूं, अल्लाह ने बड़ा करम किया है, रजब शाबान के भी रोजे रखता हूं, तहज्जुद का भी मामला है, हमारी मस्जिद में चंदा भी मैं देता हूं। बंदा पूछे यार किसने आपसे सारे सवाल किए थे, आप खुद ही शुरू हो गए क्यों? अच्छा आपको 15 साल पुराना हज याद है, कल झूठ बोला था वो याद है, आज सुबह आपने गीबत की है वो याद है, अपने मोबाइल पे थोड़ी देर पहले आपने हराम देखा वो याद है, वो याद नहीं है, वो बताना भी नहीं किसी को, बताना चाहिए भी नहीं। मैं चोट कर रहा हूं कि इतने गुनाह चल रहे हैं उसका कोई एहसास नहीं है। 15 ईयर्स ओल्ड नेकी सबको बतानी है, 15,000 लोगों को बता चुके हैं, ना करो ऐसा। कुरान कहता या अय्युहल लदीना आमनू ला तुबतिलू सदकातकुम बिलमन्नी वल अदा, ए ईमान वालों अपने सदके बातिल ना करो, एहसान जताकर ईजा पहुंचाकर। मगर इधर तो शैतान अव्वल तो नेकी के काम में खर्च नहीं करने देता, खर्च करते हैं तो छुपाने नहीं देता। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। आज ये 7 कैटेगरीज मैंने बयान की हैं। अच्छा एक बात यार, और कर दो, टाइम तो हो गया है, शैतान है ना, अब एक और हमला कर रहा होगा कि यार ये मौलाना साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, वो हमारे फलां हाजी साहब है ना, वो जब भी चंदा देते हैं ऐलान करवाते हैं, वो तो बड़े रियाकार हैं। अच्छा अपने बारे में सोचते नहीं, तेरा शैतान हमें कोई और याद दिला रहा है ताकि और गुनाह मिले हमें। वी हैव नो पैरामीटर टू से एनीबडी दैट ही इज यू नो शो ऑफिंग, ये ऑस्टेंटेशन में मुबतला है या ये रियाकारी कर रहा है। हम किसी के बारे में नहीं जानते, पता नहीं उसकी नीयत क्या हो। हम अपनी बात करें कि मैं क्यों चाहता हूं कि मेरी नेकियां लोगों को पता चले। प्लीज चेक योरसेल्फ, और अगर दिल में से आवाज आती है कि हाँ यार गड़बड़ है, नेकी करते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है, किसी तरह लोगों को बताऊं। अच्छा छुप, कोई काम छुप के भी किया है ना अकेले में, अब टेंशन शुरू हो जाती है कैसे सामने वाले को बताऊं। मिसाल के तौर पर किसी ने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली है, अब पढ़ तो ली है, अब भाजू के वक्त तो कोई भी नहीं जाग रहा था, अब कोई तो बहाना चाहिए ना, घर वालों को बताऊं, दोस्तों को बताऊं कि माँ बदौलत ने आज तहज्जुद पे उठा है, बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है। तो हम बोलते क्या करेंगे, बस यार आज बहुत थका हुआ हूँ। सामने वाला पूछेगा खैरियत तो है, बस वो अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद से उठ गया था। अच्छा सामने वाला कहेगा माशाल्लाह आपने तहज्जुद पढ़ी,
ओ दिल दिल में ठंड पै गई, साड़ी तहज्जुद देखो पता चल गई साड़ा कम हो गया।
खुद अपने आप से पूछो यार ये क्या है, ये इसलिए है कि लोग वाह करें, तो फिर किस बात की तहज्जुद है। इबादत करो नेकी करो मगर अल्लाह के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन करके बयान खत्म कर देता हूं, आप सबसे गहरा क्वेश्चन है आपके पास, ये मैं अपने आप से भी क्वेश्चन कर लेता हूं, हमारे पास ऐसी कितनी गुड डीड्स हैं, ऐसी कितनी नेकियां हैं जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने। चेक योरसेल्फ, ट्राई टू चेक, यार कितनी नेकियां हैं। आप गौर करोगे ना, हमने कोई नेकी नहीं छोड़ी, हमने उम्रे हज तवाफ तिलावत सदके सब गिनवाए लोगों। ऐसे काम करो कि मैं जाने और मेरा रब जाने। अल्लाह करीम हम सबको अपनी राह में दिल खोल कर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। कीप वॉचिंग मदनी चैनल, सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।